आज श्री गौर पूर्णिमा का पावन दिवस है। इसी तिथि पर फाल्गुन महीने के पूर्णिमा की तिथि पर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। ये भगवान का बहुत ही विशेष अवतार है, क्योंकि इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा भेद सबको दिया जो कि पहले उन्होंने किसी भी अवतार में नहीं दिया था, और वो है गोलोक वृंदावन की प्राप्ति। पात्रता अपात्रता, उचित स्थान अनुचित स्थान इत्यादि न देखते हुए उन्होंने केवल कृष्ण प्रेम मुफ्त में हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन के माध्यम से सब जगह बांटा। इसलिए जितना आवश्यक है कि हम वृंदावन के श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें, उतना ही आवश्यक है, बल्कि उससे अधिक आवश्यक है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के मधुर लीलाओं का भी श्रवण करें, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही हम श्री कृष्ण तत्व को, श्री कृष्ण के लीलाओं को, उनके नाम को, उनके गुणों को, उनके धाम को इत्यादि हम समझ पाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु खास करके भगवान के कलयुग के अवतार है, और हम सब कलयुग के पतित जीवों के लिए उनका अवतार अति महत्वपूर्ण है। पिछले दो दिनों से हम उनकी बाल लीलाएं और पौगंड लीलाएं सुनते आए हैं, और कल किशोर लीला आरंभ हुई। जैसे कि पहले दिवस पर बता चुके हैं, ये लीलाएं, ये आदि लीला जो है वो चार भागों में विभाजित है, बाल लीला, पौगंड लीला, किशोर लीला और यौवन लीला। चैतन्य लीला के अधिकृत रचयिता या लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर, जो कि व्यास देव के अवतार हैं, वो बताते हैं कि जिस तरह से श्री कृष्ण के लीलाओं का श्रवण करने से हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, ठीक उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के तत्व और लीलाओं का श्रवण करने से हमें उसी प्रकार की शुद्ध भक्ति हृदय में जागृत होगी। कल हम ये सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब किशोर लीला आरंभ करने जा रहे थे, तो उनकी उनका पहला विवाह हो चुका था, और इस अवस्था में वो नदियों में इधर उधर अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहे थे। अब तक उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण के रूप में प्रकट नहीं किया था, ये बहुत गुप्त बात थी, और भगवान की बात तो दूर है, लेकिन एक भक्त के रूप में भी उन्होंने अपने आप को पेश नहीं किया था। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए थे हमें यह सिखलाने के लिए कि कृष्ण भक्ति कैसे की जाती है, लेकिन ये भगवान का रूप भी उन्होंने कई सालों तक प्रकट नहीं किया, और अपने पौगंड और किशोर अवस्था में केवल एक साधारण या असाधारण कहिए व्याकरण और न्याय के पंडित के रूप में प्रकट पेश आए सबके सामने। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, फलश्रुति देते हैं कि जो भी इन लीलाओं का श्रवण करेगा वो शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा। स्वयं शोक करते हैं कि मैं स्वयं उन लीलाओं का दर्शन करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाया, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। और जिन लोगों ने उन लीलाओं का दर्शन किया, उन्होंने कितने ढेर सारे पाप पुण्य किए होंगे जिसकी वजह से उनको ये अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे व्यक्तियों का दर्शन करने मात्र से, जिन्होंने की चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का दर्शन किया था, हमारा उद्धार हो सकता है। तो उस समय जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो वहाँ की परिस्थिति बहुत बुरी थी। भोगवादी लोग, भौतिकवादी लोग, नास्तिक लोग बहुत अधिक संख्या में थे। भगवान ने तो घोषणा की हुई है पहले से कि जब धर्म की ग्लानि होती है तो प्रकट होते हैं। तो इस समय श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो वहाँ के नास्तिक जो थोड़े बहुत वैष्णव थे उनकी बहुत कड़ी निंदा करते थे। कहते थे कि ये वैष्णव केवल जोर जोर से हरि कीर्तन करते हैं और ऐसे लगता है कि वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके पेट में इतना ज्यादा भूख है कि वो भूख असहनीय हो गया है, इसलिए जोर जोर से हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। कोई नास्तिक कहते कि क्या कृष्ण नाम कम स्वर में लेने से क्या पाप होता है, या कृष्ण नाम लेना केवल उच्च स्वर में होता है। मैंने तो श्रीमद् भागवत ध्यान से पढ़ा है और मैंने यहाँ श्रीमद् भागवत में तो कहीं नहीं पढ़ा कि कृष्ण नाम का कीर्तन करने से आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है और हमें नृत्य करना पड़ता है। ये लोग ज्ञान के अनुशीलन को त्याग कर केवल पागल की तरह नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं। कौन से शास्त्र में ऐसे बताया है? वास्तव में श्रीमद् भागवत में ही बताया है। प्राय हर अध्याय में, हर लीला में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो ऐसे भक्ति के लक्षण उसके शरीर में प्रकट होने लगते हैं। हाँ, समय के पहले ऐसे लक्षणों का नकल नहीं करना चाहिए, इसे सहजीय कहते हैं। जैसे वृंदावन में ऐसे कई दल हैं जो झूठे आंसू बहाते हैं और कृष्ण के रास लीला की नकल करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ऐसे जो झूठे आंसू हैं वो वेदों के सारे निष्कर्ष को, सिद्धांतों को धो डालते हैं। तो इसलिए ये नास्तिक लोग प्रामाणिक वैष्णवों के आंसुओं को समझ नहीं सकते थे और इसलिए उनकी बार बार निंदा किया करते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य उनको सांत्वना देते थे, कहते थे चिंता नहीं करो, बहुत ही जल्द श्री कृष्ण अभी प्रकट होने वाले हैं। वो योग माया के प्रभाव से जानते नहीं थे कि श्री कृष्ण पहले से ही प्रकट हो चुके हैं, लेकिन एक व्याकरण के विद्वान के रूप में प्रकट हो रहे हैं समाज में। तो निमाय पंडित के नाम से जाने जाते थे, जैसे कि हम पिछले दो दिन में चर्चा करते आए हैं, और उनका रूप इतना सुंदर था कि कोई भी व्यक्ति एक बार उसे देख लेता तो आंख हटाने का मन बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल दिव्य सौंदर्य था उनका, कमल नयन, काले घुंघराले लंबे बाल, मोती जैसे दांत और गौर वर्ण, और इस तरह से एक उद्धत व्यक्ति की लीला कर रहे थे। उद्धत अर्थात बहुत घमंडी, जानबूझकर ये भगवान की लीला थी कि अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन करते हुए इसमें घमंड भी प्रकट करते थे और लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। और वो धोती भी जिस तरह से पहनते थे लोग बड़े आकर्षित हो जाते थे हर चीज से। वैसे धोती भी अलग अलग तरह से पहनी जा सकती है, जिस तरह से अलग अलग कपड़े पहनने के फैशन होते हैं तो धोती भी अलग अलग तरह से पहनी जा सकती है। तो जब धोती को के कपड़े को बाएं पैर के नीचे से ले जाकर फिर पीछे डाल दिया जाता है तो उस हिस्से को कच्छा कहते हैं, और जो आगे एक नाभि के पास में जो डाला जाता है उसे कोंच कहते हैं, और उस कोंच को निचला हिस्सा जो है वो जब ऊपर करके फिर से नाभि के पास लाया जाता है तो उसे त्रिकच्छ कहते हैं। तो निमाय पंडित त्रिकच्छ धोती पहनकर घूमते फिरते थे, वनमाला पहने हुए, चंदन का लेप लगाए हुए, और सभी लोग बहुत आकर्षित हो जाते थे उनको देखकर। तो महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में जगह जगह नवद्वीप में घूमते फिरते, हर एक व्यक्ति के घर में जाते, जिस तरह की श्री कृष्ण मथुरा में हर एक व्यक्ति के घर में जाकर कृपा बरसाते थे। तो एक बार उनके एक भक्त के घर में आए जिनका नाम था श्रीधर। ये श्रीधर बहुत गरीब ब्राह्मण था, इतना गरीब कि प्राय उसे खाने के लिए घर में कुछ नहीं रहता था, कपड़े भी फटे हुए पहनते थे। और जो भी आमदनी आती थी बहुत कम, वो भी उसका 50% वो गंगा जी की उपासना के लिए, सेवा के लिए इस्तेमाल करते थे और बाकी जो रहा 50% वो अपने घर को चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उनका व्यवसाय था कि पत्तों के द्रोण वो बेचा करते थे और केले, केले के फूल इत्यादि। तो निमाय पंडित प्राय रोज श्रीधर के यहाँ जाया करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे, उनके साथ में कम से कम 1-2 घंटे बैठते थे, उनको छेड़कर फिर चले जाते थे। वास्तव में जो भी व्यक्ति कृष्ण लीला में शामिल थे, जो कि निमाय पंडित महाप्रभु के संग निकट की लीला करते थे, वो कृष्ण लीला में भी थे, इसलिए वो यहाँ पर ऐसे निकटता से निमाय पंडित का संग कर पाए। तो श्रीधर कोलेकर भी जन्म जन्मांतर से भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। अब इनको ये अवसर प्राप्त हुआ कि निमाय पंडित के संग में वो लीला करें। लेकिन श्रीधर तो ये नहीं जानते थे योग माया के प्रभाव से कि जो ब्राह्मण उनके घर में रोज आते हैं, उनको छेड़ते हैं, वो साक्षात उनके आराध्य देव हैं। वो केवल निमाय पंडित से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। हालांकि निमाय उनको छेड़ा करते थे, फिर भी वो प्रेम करते थे। रोज आके निमाय कहते थे कि अरे श्रीधर, तुम मुझे आज क्या भेंट देने वाले हो? और श्रीधर कहते, गोस्वामी जी, मैं तो बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास क्या धन है आपको दान देने के लिए? यहाँ जगत में इतने सारे बड़े अमीर लोग होते हैं जो दान देते हैं और दानी लोगों की प्रतिष्ठा जो है वो प्राप्त करते हैं, लेकिन मैं तो उनमें से नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ और मैं आपको क्या दान दे सकता हूँ? तो निमाय पंडित कहने लगे कि देखो, तुम्हारे पास जो केले के पत्ते हैं, द्रोण है, ये केले हैं, केले के फूल हैं, ये मुझे दे दो। तो सीधा सोचा करते थे कि ये ब्राह्मण आके रोज मुझसे युक्ति से या कभी जबरदस्ती, कभी छल से मेरी चीजें छीन लेता है, मूल्य नहीं देता है, मुफ्त में ले जाता है, मैं कब तक ऐसे करता रहूं? वैसे मैं अमीर होता तो दूसरी बात थी, लेकिन मैं तो गरीब हूँ, खाने पीने की समस्या है मेरी। लेकिन फिर भी श्रीधर आगे सोचते, ये तो ब्राह्मण है और विष्णु के प्रतिनिधि है, इसलिए अगर मैं इनको दान दूंगा तो मेरा भाग्य का उदय हो जाएगा, तो मेरे लिए बहुत पुण्य का कार्य है। और वैसे बजाने क्यों, इस ब्राह्मण के प्रति मेरे हृदय में इतना आकर्षण है, इतना प्रेम है, हालांकि मुझे इतना छेड़ता है रोज, तो मैं ये समझता हूँ कि इसे मुझे ये देना चाहिए। और वैसे भी ये ब्राह्मण बड़ा घमंडी है और न जाने कोई दिन कब दिन आएगा जब वो मुझे शायद पीट भी ले, इतने घमंड से मेरे सामने आता है। और ये अगर मुझे पीट लेगा, ये तो ब्राह्मण है, मैं इसका कैसे विरोध कर सकता हूँ, प्रतिकार कर सकता हूँ? तो खैर, मैं मुझे दे ही देना चाहिए। तो फिर वो निमाय से कहते, अरे पंडित जी, ठीक है, ले लीजिए, आपको जो लेना है ले लीजिए, आप मूल्य मत दीजिए इसका। तो निमाय कहते, ठीक है, ले लूंगा, लेकिन देखो अच्छे केले देना, बिखरे हुए नहीं, और चुन चुन के मुझे सब केलों का फल भी देना। तो निमाय पंडित ऐसे श्रीधर से रोज आकर केले, केले के फूल इत्यादि लिया करते थे और श्रीधर के द्रोण में ही वो रोज खाया करते थे। श्रीधर ने दिए हुए केले के सब्जी बनाया करते थे, केलों के फूलों के सब्जी बनाया करते थे और वो ही खाया करते थे। तो देखिए श्रीधर का कितना सौभाग्य था, स्वयं भगवान उनके द्वार में आए, उनसे भोग लेकर जाते थे और उन्हीं के दिए हुए व्यंजन वो पकाकर खाया करते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि निमाय पंडित श्रीधर के पास में आए और फिर से छेड़छाड़ आरंभ किया, कहने लगे, अरे ब्राह्मण, हे विप्र श्रीधर, तुम तो हर समय 24 घंटे हरि हरि, भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण करते हो, लेकिन तुम्हारी दशा तो देखो, इतने गरीब हो, गरीबी की अवस्था में इतने दुखी हो, तुम पीड़ित हो, ये कैसे हो रहा है? वैसे तो श्री हरि तो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं और लक्ष्मीपति की तुम इतनी सेवा करते हो, लेकिन हो इतने दरिद्र, ये कैसा न्याय है, ये कैसी बात है? तो उस समय श्रीधर बड़े सोच में पड़ गए, जवाब देने ही वाले थे। लेकिन ये जो प्रश्न चैतन्य महाप्रभु ने माय पंडित से रखा श्रीधर के सामने, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आखिर समाज में भी लोगों के मन में ये प्रश्न कई बार आ जाता है कि कोई लक्ष्मी के पति नारायण की सेवा कर रहे हो तो भला गरीब कैसे हो सकते हैं। लेकिन ऐसे देखा जाता है प्राय कि भगवान श्री हरि के भक्त कई बार गरीब होते भी हैं। वैसे ब्रह्मा जी भगवान के धाम का वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में उन्होंने वैकुंठ का वर्णन किया है, और उनके ब्रह्म संहिता में उन्होंने गोलोक वृंदावन का वर्णन किया है। चिंतामणि प्रकर सत्मशुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम् तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का धाम चिंतामणि धाम है। चिंतामणि मतलब पारसमणि, जिस चीज को स्पर्श करके केवल आपकी सारे मन की वांछाएं पूर्ण हो सकती हैं। यहाँ पे चिंतामणि नहीं है भौतिक संसार में, यहाँ केवल चिंता अबाउट मनी है ना। केवल पैसे के बारे में चिंता करते रहते हैं लोग, कितना आया कितना गया, क्या था कल क्या होगा, ये बीमारी है संसार में। भगवान को भूलकर सभी इस चिंतामणि के पीछे पड़े हैं, लेकिन नहीं जानते हैं कि वहाँ कौन सी चिंतामणि है। प्रकर सत्मशु कल्प वृक्ष, वहाँ कल्प वृक्ष है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी एक कल्प वृक्ष के समान है, यहाँ सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए हमें बहुत होशियार रहना चाहिए, भगवान के सामने आकर हम क्या मांगते हैं बड़े सावधानी से मांगना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज मांग ले तो पूरी हो जाएगी, तो ऐसा ना हो कि कोई परेशानी बाद में हो जाए। कोई गरीब आदमी आकर मांगे कि भगवान मुझे केवल 1,00,000 रुपए दीजिए, और भगवान दे देंगे तो बाद में जो मुसीबत होगी उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। तो खैर, गोलोक वृंदावन में ऐसे कई कल्प वृक्ष है। लक्षावृतेश सुरभि अभिपालयन्तम्, वहाँ लाखों लाखों सुरभि गाय हैं जो दूध देती हैं, जिनका दूध बंद नहीं होता है, अमृत के समान दूध है, समान नहीं अमृत ही है वो दूध। और साथ साथ में लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम्, भगवान श्री कृष्ण की सेवा लाखों लाखों लक्ष्मी देवियां करती हैं। तो एक लक्ष्मी जी नहीं, लाखों सहस्र शत संभ्रम, लाखों लाखों लक्ष्मी देवियां भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। तो इसलिए ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिन व्यक्ति के चरण कमलों में लाखों लाखों लक्ष्मी देवियां सेवा करती हैं, और जो व्यक्ति उनकी सेवा करता है, तो वो भला गरीब कैसे रह सकता है। तो श्रीधर ने जवाब दिया, जवाब दिया कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तव में सत्य तो ये है कि मैं तो भूखा नहीं रहता, दिन भर उपवास तो नहीं करता, पेट में थोड़ा कुछ भोजन तो जाता है। और जहाँ तक कपड़ों का सवाल है, मेरे पास एक छोटा सा कपड़ा है, उसमें मेरे लिए काफी है, मुझे और कितना चाहिए। शरीर को थोड़ा बहुत ढकना है, ये वस्त्र का उद्देश्य है, मुझे शरीर को सजाना तो है नहीं। तो निमाई ने जवाब दिया कि लेकर है श्रीधर पुत्र, देखो तुम्हारे कपड़े जो है इसमें 10 जगह सिलाई की हुई है, और देखो तुम्हारा जो छत है घर का कितने छेद है इसमें, बारिश के पानी जो है टपकती रहती है बरसात के मौसम में। तो आगे निमाई कहने लगी, देखो तुम्हारी हालत देखो, और वो देखो वहां पर वो लोग चांदी देवी काली या दुर्गा की पूजा करते हैं, और देखो कितना ऐश कर रहे हैं, कितने धनी हैं, इनके पास फटे कपड़े नहीं हैं, इनके पास अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, वो बड़े अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन का सेवन करते हैं दिन भर। तो उस समय श्रीधर फिर सोच में पड़ गए और जवाब देने लगे कि देखो, चाहे कोई राजा हो या कोई रंग हो, कोई व्यक्ति एक बड़ी इमारत में बंगले में रहता हो जो रत्न से बनी हुई है, और चाहे कोई पक्षी हो जो घोंसले में अपने पेड़ में रहती हो, लेकिन दोनों के लिए समय एक समान बीतता है। काल की गति दोनों को मृत्यु की ओर ले जाती है। दोनों को अपने अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है। किसी को दारिद्र्य का अनुभव करना पड़ता है, किसी को धन मिल जाता है। तो अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार जो मिलता है उसके लिए कोई शोक नहीं करना चाहिए, और इसमें कोई हर्ष उल्लास की बात भी नहीं है। इसलिए हे निमाय पंडित, आपको जानना चाहिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है इस संसार की वस्तुओं के पीछे भागता नहीं है, केवल भगवान श्री कृष्ण की या श्री हरि की पूजा करता है, आराधना करता है और उसे संतुष्ट होता है। निमाय पंडित ने जवाब सुना, अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन बाहर से ये प्रसन्नता को व्यक्त नहीं किया। वास्तव में ये जो प्रश्न निमाय पंडित ने किया था ये शास्त्र में कई जगह भी आता है, दिखने में आता है। वैसे तीन प्रकार के आराध्य या उपासक होते हैं। एक है शाक्त। शाक्त मतलब जो शक्ति या काली की या दुर्गा की पूजा करते हैं, जिनका वर्णन निमाय पंडित ने भी किया। उस समय बंगाल में ये शाक्त बहुत बड़ी संख्या में थे, आजकल भी हैं। उनको बंगाली में शाक्तो कहते हैं, शाक्त। और फिर दूसरे रहे वैष्णव, जो श्री हरि की पूजा करते हैं। और तीसरे रहे शैव। शैव मतलब जो शिव जी की उपासना करते हैं। तो यहाँ निमाय पंडित ने शाक्तों की और वैष्णवों की तुलना से प्रश्न किया था, लेकिन श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज ने शैव और वैष्णव के बारे में ऐसा ही एक प्रश्न किया। दशम स्कंध में आता है ये प्रश्न। सुंदर वार्तालाप है, सभी को पढ़ना चाहिए। परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज से कहा कि हे विप्र, कृपा करके ये बताइए कि ये ऐसा क्यों है कि जो लोग शिवजी की पूजा करते हैं उनको धन की प्राप्ति होती है, और जो हरि की उपासना करते हैं वो गरीब रह जाते हैं, जबकि शिवजी एक वैरागी हैं, एक पेड़ के नीचे रहते हैं, उनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, स्मशान भूमि का रज उनके शरीर पर लगा हुआ रहता है, सांप गले में पहने हुए होते हैं, एक कुटिया भी नहीं होती रहने के लिए, लेकिन उनके जो उपासक होते हैं उनके पास बड़े बड़े गाड़ी बंगले नाना प्रकार की चीज होती है, ऐश्वर्य होते हैं, और श्री हरि जो कि लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, उनके जो भक्त होते हैं गरीब होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देखो, ये अच्छा प्रश्न किया आपने। शिव जी वास्तव में सृष्टि के निर्माण में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसा नहीं है कि शिवजी की भूमिका या शिवजी की सेवा केवल सृष्टि के संहार के समय होता है। वो तो है ही, वो तांडव नृत्य करते हैं, भयंकर क्रोध को प्रकट करते हैं और सारे सृष्टि का संहार कर डालते हैं, लेकिन सृष्टि के निर्माण रचना के समय भी शिवजी का शंभु के रूप में बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका रहती है। तो उस समय शिवजी महत्तत्व के माध्यम से आकर अहंकार के तत्व से प्रकट होकर तीन गुणों में सत्व रजत तमस में प्रकट हो जाते हैं, और इस तरह से वो तीन रूपों में प्रकट हो जाते हैं, और फिर 16 प्रकार के तत्व जो हैं जिनसे भौतिक सृष्टि बनी हुई है वो उनकी शक्तियां हैं। जैसे कि ये 5 महाभूत हैं, भूमि आप नल वायु खम, और फिर ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं और 5 हमारी ज्ञानेन्द्रियां हैं, और फिर मन। ये 16 प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनसे ये भौतिक सृष्टि बनी हुई होती है। तो इन 16 तत्वों से पदार्थों से भगवान शिव के अलग अलग लिंग सारे ब्रह्मांड भर में उपस्थित हैं, और शिव जी के अलग अलग उपासक जो हैं इन शिवलिंगों के माध्यम से शिव जी की उपासना करते हैं, और जिस पदार्थ से वो शिवलिंग बना हुआ है उसका ऐश्वर्य वो प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि अगर वो आकाश से बना हुआ लिंग या आकाश लिंग की उपासना करता है तो आकाश के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है उस शिव जी के भक्त को। अगर उसने ज्योतिर्लिंग की उपासना की तो ज्योति के या प्रकाश के अग्नि के जो भी ऐश्वर्य होते हैं उस व्यक्ति में आ जाते हैं। इस तरह से जिन लोगों के हृदय में नाना प्रकार की काम वासनाएं हैं, संसार को भोग करने की इच्छाएं हैं, वो इन नाना प्रकार के शिवलिंगों की उपासना करते हैं। वैष्णव जब शिवलिंग को देखते हैं तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन केवल शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमें श्री हरि के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से जो शैव होते हैं वो शिव जी की इस तरह से भक्ति करते हैं, भक्ति तो नहीं कहते, उपासना कहते हैं। उपासना करके ये सारे शक्तियां और ऐश्वर्य भोग के साधन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन भगवान श्री हरि की बात तो दूसरी है, क्योंकि भगवान श्री हरि का इन तीन गुणों से सत्व रजस तमस इनसे कोई संबंध नहीं है। वो तो आध्यात्मिक स्तर में विशुद्ध सत्व गुण में स्थित है हमेशा के लिए। कबीर गुण में भावेश एभी सर्वम इदम जगत मोहितम नाभि जानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप में बताते हैं कि ये संसार भ्रमित हो चुका है, मोहित हो चुका है इन तीन गुणों की वजह से, सत्व रजस और तमस। और तीन गुणों में मोहित होकर ये संसार के लोग नहीं जानते कि मैं इस तीन गुणों के परे हूँ, मैं अव्यय हूँ। तो भगवान श्री हरि इन तीन गुणों के हमेशा परे होते हैं, इसलिए वो गुणों के भीतर जो वस्तु है उसको प्रदान क्यों करने वाले हैं श्री हरि? तो भगवान श्री हरि जो अपने भक्तों को भेंट देते हैं वो भेंट भी इस तीन गुणों के परे है। इसलिए भगवान श्री हरि के भक्तों को भक्ति प्राप्त होती है जो कि अलौकिक है, जो कि संसार के परे है, जो आध्यात्मिक है। श्री हरि के भक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनको दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाती हैं, दिव्य ज्ञान के चक्षु। और दूसरी ओर जो शैव होते हैं, जो भोग की उपासना, जो भोग की अभिलाषा से शिव जी की उपासना करते हैं, उनकी आंखें भोग और ऐश्वर्य से और भी ढक जाती हैं, और इस संसार के और भी अंधकूप में, गहराई में वो और प्रवेश कर लेते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो कृष्ण भक्त होता है वो कोई उसकी अवस्था बुरी है, नहीं। इसके पास ऐसे ऐश्वर्य होते हैं कि जिनकी आंखें नहीं है वो देख नहीं पाते हैं, लेकिन जिसकी आंखें हैं वो समझ लेता है कि वास्तव में बहुत अमीर है। इसलिए निमाय पंडित ने भी श्रीधर से कहा कि श्रीधर तुम कहते हो कि तुम बहुत गरीब हो, मैं भी कहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास एक ऐसा धन है जो कि विश्व भर में किसी के पास नहीं है, तुम तो सबसे अमीर आदमी हो है श्रीधर। तो श्रीधर समझ नहीं पाए कि क्या कर रहे, क्या बोल रहे हैं निमाय। सोच रहे थे कि ये तो निमाय फिर से हमारे मजाक उड़ा रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो श्रीधर सबसे अमीर आदमी है। भगवान का और एक नाम है दीनानाथ, दीनों के नाथ है, जो बिल्कुल दीन है, हीन है, बिल्कुल जिनके पास कुछ नहीं है उनके नाथ। लेकिन दीन किस दृष्टि से? भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से ये संसार में सभी लोग दीन है, केवल हरि का भक्त अमीर है। अगर किसी के पास पैसे हो या न हो, अगर वो हरि का अभक्त है तो वो दीन कहलाता है। और कोई व्यक्ति अगर हरि का भक्त हो, भले वो गरीब हो या अमीर हो, वो बहुत अमीर कहलाता है। तो इस तरह से श्रीधर सबसे अमीर व्यक्ति थे। तो सुखदेव गोस्वामी आगे समझाने लगे कि हे महाराज परीक्षित, यही प्रश्न तुम्हारे पिता महा दादाजी ने, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। जब युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर दिया था, उसके अंत में यही प्रश्न श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा, जिस समय श्री कृष्ण धर्म व्याख्यान कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी तरह का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, जब मैं मेरे किसी भक्त के ऊपर विशेष कृपा करता हूँ तो उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। यस्याहम् अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनं शनैः। तो इसका मतलब है कि अगर भगवान ने किसी व्यक्ति से कुछ छीन लिया हो तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई दुर्घटना है, उसे सोचना चाहिए कि ये कितनी अच्छी बात है, भगवान की कृपा मेरे जीवन में अभी आ गई है। और भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे कि धीरे धीरे से सब कुछ मैं उसको छीन लेता हूँ, और जब वो ऐसे दारिद्र की अवस्था में आ जाता है तो उसके परिवार के लोग, उसके सभी संबंधी सब उसको त्याग देते हैं और इतना निराश हो जाता है इस भौतिक संसार से, फिर वो मेरे भक्तों के संग में आ जाता है। जब समझ लेता है कि संसार खोखला है तब मेरे भक्तों के संग में आ जाता है। इसका मतलब है कि हमें ऐसे कोई दुर्घटना के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए भक्तों के संग में आने के लिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है पहले से ही भक्तों के संग में आ जाता है, और भक्तों के संग में आने के बाद में अगर उसका सब कुछ हरण हो जाए, हरी है हरण करने वाले है ही ना, एक ना एक दिन उसके बाद में अगर हरण हो जाए तो फिर कोई चिंता नहीं, क्योंकि भक्तों का संग एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहाँ हमारे पास कुछ हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। भक्तों का संग एक ऐसा नाव है जो कि हमें भवसागर के पार करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित करा देगा। इससे और अधिक हमें क्या चाहिए संसार में? ये संसार का धन तो एक न एक दिन हमसे छीन लिया जाएगा, क्षीण होगा, तो इस क्षणिक धन के पीछे हम क्यों भागें? जो असली धन हमारे पास में है मुफ्त में प्राप्त होता है, तो हम इस नकली धन के पीछे क्यों भला भागे? तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे थे कि जब ऐसा व्यक्ति मेरे भक्तों के संग में आ जाता है पूरी तरह से निराश होकर संसार से, तब मैं उसको धीरे धीरे से मेरी भक्ति का भेंट देता हूँ, उसे परम सत्य की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति वास्तव में बड़ा भाग्यशाली होता है। और कई बार जब ऐसे दारिद्र की अवस्था में वो निस्सहाय भाव से मेरे शरण लेता है तो उसकी प्रेम और भी गाढ़ हो जाता है, तीव्र हो जाता है। तो ये प्रश्न भी आता है, कई भक्त भी पूछते हैं, मैं इतने समय से जाप कर रहा हूँ फिर भी मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? एक बार ऐसे हुआ कि कई हरे कृष्ण भक्त जो है वो विदेश गए थे, कैम्बोडिया नाम के देश में गए थे। कैम्बोडिया दक्षिण पूर्व एशिया में है, और जैसे आप जानते हैं कि वैदिक संस्कृति विश्व भर में फैली हुई थी अनादिकाल से। जैसे इंडोनेशिया में भी आप देखते हैं कि राम के कई मूर्तियां सब जगह, महाभारत इत्यादि कृष्ण अर्जुन की मूर्तियां बीच सड़क में भी दिखाई पड़ती हैं। जकार्ता जो कि राजधानी है वहां पे दिखाई पड़ती है, और अंकुर वाट जो सबसे प्राचीन मंदिर है कंपुचिया में है, भगवान विष्णु का मंदिर। हाँ अभी मुसलमानों का राज है तो सब वो अभी तोड़ रहे हैं, लेकिन इतिहास की बात है, सत्य है। तो अंकुर वाट मंदिर देखने के लिए ये भक्त जा रहे थे। उस मंदिर में पहुंचने के लिए उनको एक बहुत बड़े तालाब से गुजर के जाना पड़ा, और एक नौके में बैठे मोटर बोट में। तो ऐसे हुआ दुर्दैव से या सौभाग्य से, जो भी समझिए, जब वो तालाब के बीच में पहुंच गए तो नौका डूब गया। जब डूब गया तो सभी लोग बड़े परेशान हुए, और नौका टूट गया और जो भी नौके के अंदर था उसको पकड़ के वो तैरने का प्रयास कर रहे थे। तो उसमें डीजल के वगैरह या पेट्रोल के कई साथियां थी, तो उनको पकड़कर किसी न किसी तरह से वो तैर रहे थे, और पेट्रोल इत्यादि सब शरीर पे आ गया था, शरीर बिल्कुल काला हो गया था सबका। और इस तरह से 4-5 घंटे वो उस बड़े विशाल तालाब में जो कि सागर के समान था वो तैर रहे थे। उनमें से कई लोग मर भी गए, डूब गए, और बचे केवल 2-3 भक्त। अभक्त लोग कई थे। तो आखिर में जब खबर पहुंची तो पुलिस इत्यादि आ गए, इन बचे हुए 2-3 भक्तों को उठा लिए और ले गए। तो उनमें से जो एक भक्त थे वो जोर जोर से बोल रहे थे, 16 साल से मैंने निर्जल एकादशी किया है, एक बूंद भी पानी मैंने नहीं लिया एकादशी के दिवस पर, हर रोज 16 माला का जाप किया हरे कृष्ण महामंत्र का, एक दिन भी चूका नहीं मेरा, तो मेरी ऐसी हालत क्यों हो गई? भगवान ने मेरी ऐसी परिस्थिति क्यों बनाई। तो ऐसे कई बार 16 साल 16 माला का जाप करने के बाद, निर्जल एकादशी का व्रत पालन करने के बाद, फिर भी कभी कभी भक्तों के हृदय में अभी जो है श्रद्धा बहुत कोमल होती है। पक्के नहीं हो सकते हैं, भक्ति में पक्का होना बहुत कठिन बात है। माया देवी आकर हमें डावाडोल बहुत जल्दी कर देती है, इसलिए हमें समझना चाहिए श्रद्धा से जो भगवान श्री कृष्ण वचन दिए युधिष्ठिर महाराज को, कि ऐसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमें डाला जाता है तो भगवान की असीम कृपा है। ये इसे दुर्घटना नहीं कि समझना चाहिए कभी भी। जिस तरह से जब शिल्पीकार होता है मूर्ति बनाता है तो ठोकर मार के मूर्ति का सौंदर्य प्रकट होता है। केवल यूं अच्छे ढंग से पत्थर के ऊपर हाथ फेरने से मूर्ति नहीं बनती, जब ठोकर मारता है जोर से हथौड़ी को लेकर फिर सुंदर मूर्ति बनती है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण देवी शिल्पकार है, हमें हमारे हृदय में ठोकर मारते हैं कभी कभी, हमें दुख में डालते हैं, कष्ट में डालते हैं, संकट में डालते हैं, जिससे कि हमारे जो भी अनर्थ है हृदय में वो टूट जाए, वो निकल जाए, और जब हम निस्सहाय हो जाए तब हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाए पूरे हृदय से। इसलिए ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत में एक सुंदर श्लोक कहा है, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वा वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो अगर कोई व्यक्ति समझ लेता है तत्ते अनुकंपा कि आपकी ये अनुकंपा है, आपकी कृपा है, और जो भी कष्ट आ रहा है वास्तव में उसका कारण ये है कृतम विपाकम कि मैंने पूर्व जन्मों में इतने सारे पाप किए हैं कि मेरे पापों का फल ही मुझे मिल रहा है, इसलिए कोई और दोषी नहीं है इसके लिए। यही महत्वपूर्ण बात है। जब हम संकट में पड़ जाते हैं तो हमारी एक आदत रहती है कि हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं कि इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से वो हो गया, यह साय ने उसने मुझे धोखा दे दिया इसलिए मैं बर्बाद हो गया, या मेरे इससे या उस व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में कष्ट हुआ। लेकिन नहीं, ये तो केवल निमित्त है, कष्ट तो केवल हमारे पापों के फल स्वरूप आ रहे हैं, वो तो जिम्मेदार नहीं है हमारे कष्ट के लिए। इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो भक्त है, जो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि मेरे कष्टों का के लिए जिम्मेदार व्यक्ति मैं ही हूँ, और ऐसे कष्ट की स्थिति में हृद्वा वपो भी नमस्ते भगवान की सेवा को त्यागता नहीं है, अपने हृदय से, अपने वाक, अपने वचन से और अपने शरीर से, सब पूरी हृदय से भगवान की सेवा करते रहता है, तो ऐसे व्यक्ति आपके धाम को प्राप्त करने का अधिकारी व्यक्ति हो जाता है। जीवे तयो मुक्ति पदे दाय भाग, दाय भाग मतलब अधिकारी व्यक्ति। आचार्य ने सुंदर टीका की है इस श्लोक के ऊपर और बताया है कि अगर कोई पुत्र रहता है तो पुत्र को अगर पिता की संपत्ति मिलनी है वो तो स्वाभाविक तौर से मिलती है, तो पुत्र को क्या करना होगा पिता को धन, पिता के धन और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। आचार्य समझाते हैं उसे केवल जीवित रहना होगा। अगर जीवित रहेगा तो स्वाभाविक तौर से पिताजी का जो भी कुछ है उसे मिल जाएगा, संसार का नियम है। तो ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी हमारे पिता है। अगर हम केवल भक्ति में जीवित रहें, भगवान की सेवा को कभी भी नहीं त्यागें तो भगवान इतने आभारी हो जाते हैं ऐसे भक्त के कि वो अपना सब कुछ भगवान को दे देते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज की भक्ति से भगवान इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना स्वतः उनका धाम ही दे दिया ध्रुव को। हम जब किसी व्यक्ति से आभारी हो जाते हैं, कोई हमारे लिए कोई भला कार्य करता है तो हम धन्यवाद कहते हैं, कुछ भेंट देते हैं, लेकिन कभी हम ऐसा करते हैं कि अपना घर ही दे देते हैं? नहीं। लेकिन भगवान
कि गुण देखिए कि भगवान ने अपना ध्यान ही दे दिया ध्रुव महाराज को, कह दिया ये ध्रुव लो, ये ध्रुव तारा अब तुम्हारा है और आज भी हम ध्रुव तारे को देख सकते हैं उत्तर की दिशा में। और ये भी एक वैकुंठ लोक है इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर। जब सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तो ये ध्रुव लोक नष्ट नहीं होता। तो इस तरह से जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हर अवस्था में करता है, कभी भी भक्ति को त्यागता नहीं है, कठिन से कठिन समस्या कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, वो व्यक्ति वास्तव में भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करने के लिए अधिकारी व्यक्ति बन जाता है। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त भौतिक चीजों को कोई महत्व नहीं देते हैं, इसलिए चाहे वो दारिद्र्य की स्थिति में हो या वो धनी स्थिति में हो, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने इतना सारा धन दे दिया तो सुदामा वैसे ही रहते थे जैसे कि वो पहले रहते थे गरीब की अवस्था में, कभी भी अपने धन से आसक्त नहीं हुए, कभी भी उन्होंने अपने धन का प्रयोग भोग के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया, केवल भगवान की सेवा के लिए किया। क्योंकि धन देने वाले हैं लक्ष्मी देवी और लक्ष्मी देवी का स्थान है हमेशा भगवान नारायण के चरण कमलों में, लक्ष्मी देवी हमेशा नारायण की सेवा करती हैं, इसलिए हमारे पास जो लक्ष्मी है हमें भी उसे नारायण की सेवा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये है लक्ष्मी का सही उपयोग, धन का सही उपयोग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने या निमाय पंडित ने जो श्रीधर कोलोवेचा भी तर्क किया था, वो हम सब हमारे उद्धार के लिए हमारे मार्गदर्शन के लिए उन्होंने किया। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर महाराज का जो वार्तालाप और संवाद हुआ उसका एक दृष्टांत देकर सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को ये बात समझाई। तो इसके बाद में निमाय पंडित श्रीधर से कहने लगे कि ठीक है श्रीधर, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं ये ले जाऊंगा और फिर से आऊंगा। और इस तरह से श्रीधर के पास रोज आया करते थे। और आगे चल के एक दिन निमाय ने पूछा, श्रीधर मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम रोज मुझे इतने गरीब होते हुए भी तुम सब कुछ दे रहे हो, कोई मूल्य भी मैं तुम्हें नहीं देता, इतना तुम्हें मैं सताता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वैसे श्रीधर कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन श्रीधर कोलोवेचा ने क्या मांगा, उन्होंने कहा कि हे विप्र, जन्म जन्मांतर आप इसी तरह मेरे पास आए और मेरे से केली चोरी करके ले जाया करें। ये है भक्त, भौतिक बुद्धि से ये समझ नहीं सकते हैं, भौतिक बुद्धि से तो ये मूर्खता की बात है। जैसे भगवान आए सामने और पूछें, जो चाहिए वो पूछो, मैं सारी वांछाओं को पूर्ण कर दूंगा, और हम कहें कि मेरे पास आके केले चोरी करो, तो ये किस तरह की बुद्धि है। बहुत अच्छी बुद्धि है भक्तों की दृष्टि से, भक्ति के दृष्टिकोण से। तो इस तरह से निमाय पंडित ऐसे लीला नवद्वीप में करते रहे। और वृंदावन दास ठाकुर कहने लगे कि मैं उस समय उपस्थित नहीं था, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। तो निमाय पंडित ऐसे लीला करके लौट आते घर में, और एक बार निमाय पंडित अपने घर में बैठे पूर्णिमा के चांद को देख रहे थे, अचानक वृंदावन चंद्र की भाव की भावना उनके हृदय में जागृत हुई और फिर उन्होंने बांसुरी बजाना आरंभ किया, जिस तरह से वृंदावन में कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। उनकी माता शची देवी अंदर कमरे में विश्राम कर रही थी, जब बांसुरी की ध्वनि आई तुरंत वो भावभोर होकर बेहोश हो पड़ी। आखिर कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर कौन अपने होश को रख सकता है। तो इस तरह से शची माता जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई, कहा चल रहे, बांसुरी की ध्वनि कहाँ से आ रही है, ये जो निमाय वहां बैठे हैं वहां से आ रही है। जल्दी निमाय के पास गई तो बांसुरी तो नहीं देखा, लेकिन पूर्णिमा का चांद श्री निमाय पंडित के वक्ष स्थल पर देखा और सच चकरा गया सची देवी का, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ। और फिर बाहर आ गई तो उन्होंने देखा कि अचानक नाना प्रकार के अग्नि ज्योति इत्यादि एक प्रकार का तेज सारे घर में फैला हुआ है, और अचानक वो तेज अदृश्य हो गया और फिर कमल पुष्प का सुगंध आने लगा, और फिर अचानक उन्होंने देखा कि ऊपर देवलोक के कई निवासी आकर कमल पुष्प इसको अर्पण कर रहे हैं। उनके ही पुत्र निहाय पंडित को ये कमल पुष्प अर्पण करने आए हैं। तो बारंबार सती देवी ऐसे दृश्य देखा करती थी, लेकिन ऐसे दृश्य का वास्तव में मतलब क्या है वो नहीं समझती थी। ये भगवान की योग माया है। ये है अंतर योग माया में और महामाया में। संसार में लोग जो हैं वो महामाया में पड़े हैं, जिससे कि वो भगवान को समझ नहीं सकते हैं। ये नास्तिक हैं। ये लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो योग माया के प्रभाव में होते हैं। जैसे कि माता यशोदा। माता यशोदा कभी ये नहीं सोचती थी कि मेरा बच्चा भगवान है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुंदर मुखारविंद खोल दिया और सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन कराया माता यशोदा को, तो उस समय माता यशोदा का सर टकरा गया और वो सोचने लगी कि ये क्या बात है, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया। और जो वात्सल्य की भावना थी वो खत्म हो गई। तो ये भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने फिर से योग माया का पर्दा अपने माता के नेत्रों के सामने लगा दिया। और फिर माता यशोदा सोचने लगी, अरे ये तो मेरा बच्चा है, शायद मैंने सपना देखा होगा। तो ठीक उसी तरह से योग माया का पर्दा सची देवी के नेत्रों के सामने भी था, जिसके फलस्वरूप वो पहचान नहीं पाई कि उनका पुत्र साक्षात श्री हरि श्री कृष्ण है। सची माता की बात तो क्या, अन्य वैष्णव और सारे नवद्वीप के निवासी जो बार बार निमाय पंडित को देखा करते थे वो भी समझ नहीं पाए कि ये वास्तव में भगवान है। लेकिन इतने विद्वान पंडित थे और उनकी विद्वत्ता की कोई सीमा नहीं थी, जिसका वर्णन हम कल से दो दिनों में कर चुके हैं। तो बड़े से बड़े नास्तिक भी आकर सर झुकाते थे निमाय पंडित के सामने, यहाँ तक कि अपने पालकी से उतरकर दंडवत करते थे निमाय पंडित को। और जब भी उनके घरों में कोई अनुष्ठान होता था, कोई धार्मिक कार्य होता था, तो निश्चित रूप से निमाय पंडित के घर में कोई भेंट जैसे कि भोजन या कपड़े इत्यादि भेजा करते थे। निमाय पंडित गृहस्थ आश्रम की लीला कर रहे थे, तो जिस तरह से आदर्श गृहस्थ को होना चाहिए निमाय पंडित ने भी ये दिखाया। भगवान जब अवतार लेते हैं तो जिस रूप में अवतार लेते हैं वैसे ही वो कार्य करते हैं। जब वो द्वारकाधीश बने तो आदर्श गृहस्थ कैसे होना चाहिए उन्होंने सिखलाया। जब वो प्रभु रामचंद्र जी के रूप में आए तो आदर्श मनुष्य कैसे होना चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम वो उन्होंने सिखलाया। जब वो अपने आदि रूप एक ग्वाल बाल के रूप में आए तो गवों को कैसे चराना वो उन्होंने सिखाया, गवों का देखभाल कैसे करना है। तो इस तरह से जब निमाय पंडित विद्वान बने तो ऐसे विद्वान बने कि उन्होंने सिखाया कि विद्वान बनना हो तो ऐसे बनना चाहिए। और जिस तरह वो गृहस्थ आश्रम की लीला कर रहे थे तो गृहस्थी का जो कार्य होता है, जो कर्तव्य होते हैं, वो भी निमाय पंडित ने अपने उदाहरण से दिखाया। और कहा भी उन्होंने कि गृहस्थ का मूल कर्म होता है अतिथि सेवा। बहुत बड़ी बात है। शास्त्रों में मनु संहिता और अन्य धर्म शास्त्रों में अतिथि सेवा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। अतिथि वो है जो अतिथि बिना तिथि न देखते हुए हमारे घर में आता है, मतलब घोषणा करके नहीं आता, सूचना देकर नहीं आता कि मैं आ रहा हूँ आपके घर में, बस आ जाते हैं आपके घर में, आपके द्वार में खड़े हो जाते हैं। तो उस समय ऐसे व्यक्तियों का स्वागत हम कैसे करते हैं, ये है अतिथि सेवा, अतिथि सेवा। शास्त्रों में बताया जाता है कि जब कोई अतिथि हमारे घर में आता है तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अतिथि देव भवो, देव के समान भगवान के समान उनकी सेवा करनी चाहिए, भले वो आदमी कितना बाहर बुरा आदमी क्यों ना हो, दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन अपने घर में आया है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। और अगर उसकी सेवा नहीं की और वो व्यक्ति अगर असंतुष्ट होकर चला गया तो ऐसा कहा जाता है कि अपने पाप छोड़कर जाएगा और आपके पुण्य लेकर जाएगा। इसका मतलब है कि जितना पापी व्यक्ति आपके घर में आता है उतना उसको संतुष्ट करके भेजना चाहिए, क्योंकि वो अगर छोड़ जाएगा तो ढेर सारे पाप छोड़ जाएगा और वो बोझ हमारे लिए सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर हमारे पुण्य ले गया तो फिर हमारी दुर्दशा हो जाएगी। और अगर वो संतुष्ट होगा तो सारे अच्छी चीजें भगवान की कृपा हमें मिलेगी। तो एक साधारण व्यक्ति की सेवा करने से इतना लाभ मिलेगा, तो वैष्णव की सेवा करने से भला इतना लाभ मिलेगा, ये हमारे कल्पना के बाहर है। हम एक भी वैष्णव को दो मीठे शब्द बोले, भले हमें पता भी ना हो कि वैष्णव क्या है, भगवान क्या है, भले हम बड़े से बड़े नास्तिक क्यों ना हो, लेकिन गलती से भी हमने दो मीठे शब्द एक वैष्णव से कहे थे, उसकी थोड़ी बहुत सेवा की, तो ये बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल दो मीठे शब्द पर ही हमारी सेवा सीमित रखनी चाहिए, नहीं, जितना हो सके सेवा करना चाहिए निष्कपट भाव से। तो महाप्रभु ने अपने शिष्यों को बताया कि देखो, गृहस्थी का कर्तव्य है कि अतिथियों का ऐसे सेवा करना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ, तो तुम ध्यान से देखो कि मैं कैसे सेवा कर रहा हूँ। इसलिए जब भी सेवक कोई अतिथि आते तो स्वयं उनकी सेवा करते, स्वयं उनको उनके हाथ पैर धुलाते, उनको बिठाते, उनको भोजन खिलाते। और कई बार ऐसे होता कि 10, 20, 30 सन्यासी अचानक आ जाते, क्योंकि नवद्वीप जो है शिक्षा का स्थान था और जगह जगह से लोग वहाँ शिक्षण के लिए आते थे, सन्यासी भी आए करते थे। तो अचानक निमाय पंडित किसी अपने विद्यार्थी को भेजा करते थे अपनी माता शची देवी के पास में कि अभी आधे घंटे में 20 सन्यासी आ रहे हैं घर में भोजन के लिए। और शची देवी हमेशा चिंता में पड़ जाती, अरे 20 सन्यासी आए और 15 मिनट 20 मिनट रहे, कैसे बनाऊंगी। और वैसे घर में देखती तो कोई सामग्री नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का असली जो धन है वो उसका उसकी गरीबी है ना। जितना गरीब ब्राह्मण है उतना वो अमीर है वास्तव में देखा जाए तो। तो शची देवी देखती कि घर में तो कुछ नहीं, सारे बर्तन खाली पड़े, अब क्या किया जाए, तो बड़े चिंता में पड़ जाती। लेकिन हर समय कोई न कोई व्यक्ति आकर कह देता, मैं ये दान आपको देना चाहता हूँ, और जो भी सामग्री आवश्यक थी उन 20-30 सन्यासियों को या अतिथियों को खिलाने के लिए वो उतना आ जाता था। वास्तव में सही बात है, अनन्या चिंतयंतो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में बताया है कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, सतत चिंतन करते हैं, हर समय मेरी उपासना में मग्न रहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए योग क्षेम मैं करता हूँ। योग मतलब जो भी इनकी चीजों जो भी चीजें इनकी आवश्यक हैं वो मैं दे देता हूँ, क्षेम मतलब जो भी वस्तुएं उनके पास हैं उनका संरक्षण मैं करता हूँ। आजकल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपने बिल्डिंग के बाहर योग क्षेम भवन करा दिया है, हमारे भक्तों में से कई LIC एजेंट भी हैं। लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप योग क्षेम करा रहे हैं लोगों का, कराने वाले केवल श्री कृष्ण हैं। तो इसलिए भक्त को कभी चिंता में नहीं रहना चाहिए, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये चिंता हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, भक्तों का डिपार्टमेंट नहीं है, ये चिंता उनका डिपार्टमेंट है जो भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखते हैं। इसलिए एक साधारण भाषा में बताया जाता है, मायादास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास, है ना। कृष्णदास हमेशा निश्चिंत रहता है, देखना है अगर कोई कमी है घर में, देखना उनका काम है, वो देखेंगे, अगर चाहे तो देंगे, नहीं देंगे तो ठीक है, उनकी कृपा समझ कर स्वीकार करेंगे। तो हर बार सची माता के घर में ऐसे सामग्रियां खुद ब खुद आ जाया करती थी। और फिर हिमाय पंडित लक्ष्मी देवी हिमाय पंडित की पत्नी, वो बड़े संतुष्टि से बड़े निष्कपट भाव से भक्ति भाव से भोजन पकाती थी और फिर हिमाय पंडित उनको खिलाते थे अतिथियों को, और सची माता ये दृश्य देखकर बड़ी प्रसन्न हो जाती थी। चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया अपने शिष्यों को कि अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्यों न हो, अगर उसके घर में अतिथि आए और उसके घर में कोई सामग्री न हो उसे अन्न इत्यादि खिलाने के लिए, तो कम से कम उसे दो मीठे शब्द कहने चाहिए, घर में एक आसन देना चाहिए बैठने के लिए, विश्राम के लिए स्थान देना चाहिए, कम से कम एक ग्लास जल तो पिला देना चाहिए। इतना अगर कोई नहीं करेगा तो वो तो पशुओं के और पक्षियों से भी अधिक गिरा हुआ है, वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। तो इस तरह से हमारे द्वार में जो आते हैं कभी भी उनको दूर नहीं हटाना चाहिए, कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो, कुछ हाथ में देकर, कुछ दो मीठे शब्द देकर ये हमें भेजना चाहिए। कई बार मंदिर में ये समस्या होती है कि लोग शराब पीकर आते हैं, नाना प्रकार के लोग आते हैं, कई लोग आते हैं दंगा करते हैं मंदिर में, क्योंकि मंदिर के दरवाजे खुले रहते हैं सभी के लिए, कोई भी आ सकता है। तो किस तरह से इनका भी देखभाल करना, उनको प्रसाद खिलाकर मीठे शब्दों से निकाल देना चाहिए। तो ये भी कला है, ये हमारी संस्कृति देखिए कितनी सूक्ष्म है, कितनी ऊंची संस्कृति है ये, लेकिन आजकल ये संस्कृति लुप्त होती नष्ट होती जा रही है। तो संस्कृति कल्चर, इसका महत्व ये है कि संस्कृति अगर बनी रहे तो भक्ति बनी रहेगी, भगवान की सेवा बनी रहेगी। जितना संस्कृति नष्ट होती जाती है लोग भगवान से ज्यादा दूर होते जा रहे हैं, ये दिखने में आता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अच्छे ढंग से अतिथियों की सेवा की और बड़े दानी भी थे, नाना प्रकार के गरीब व्यक्तियों को इत्यादि दान दिया करते थे। गृहस्थी में जैसा कर्तव्य निभाना चाहिए अपने उदाहरण से उन्होंने सिखलाया। तो जिस तरह से निमाई पंडित एक आदर्श गृहस्थी थे, उसी तरह से लक्ष्मी देवी एक आदर्श गृहिणी थी। सुबह जल्दी उठती थी, आजकल बहुत कम दिखने में आता है, सुबह सूर्योदय के पहले उठती थी और घर में जो नाना प्रकार के शुभ जो चिन्ह है, लक्षण है, वो करती थी, रंगोली और स्वस्तिक शंख चक्र के चिन्ह इत्यादि। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि घर में एक तरह के वाइब्रेशन, अच्छे वातावरण पैदा हो, अच्छा वातावरण पैदा हो जाता है। ये अलग विषय ही है, अलग हरि भक्ति विलास और अन्य शास्त्रों में इन चिन्हों के बारे में स्वस्तिक और इत्यादि बहुत लंबी व्याख्या उपलब्ध है। इसका मतलब है कि घरों में इस तरह के शुभ चिन्ह निकालना ये आवश्यक है। तो लक्ष्मी देवी ऐसे किया करती थी, घर को धो डालती थी, फिर भगवान विष्णु के आर पूजा के लिए सारे सामग्री तैयार करती थी, जैसे कि चंदन, फूलों की माला इत्यादि, और करके फिर सारा भोजन पकाना, घर अपने पति की सेवा करना, और कभी भी अपने सास को लगने नहीं दिया कि वो उनकी उम्र हो गई है। और अच्छे तरह से संबंध दोनों के बीच में, सास और बहू के बीच में हुआ करता था। वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि सची माता जब लक्ष्मी प्रिया को देखती तो उनका हृदय प्रेम से भरा था, आनंद से भरा था। तो आदर्श गृहस्थ आश्रम में परिवार के सदस्यों के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए, ये कि हम इन शास्त्रों से, इन कथाओं से हम जान सकते हैं। तो इस तरह से निमाई पंडित लीला करते करते एक दिन उन्होंने घोषणा की, हे माता, मैं भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। तो वो पूर्व बंगाल की ओर निकलने का निश्चय निमाई पंडित ने किया। बंगाल के दो हिस्से थे, पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल। गंगा जी के तट के दोनों ओर, गंगा जी के दोनों ओर जो भूमि है उसको गौड़ देश कहा करते थे, और उसके बहुत पूर्व भाग में पद्मावती नदी के दोनों भाग में जो भूमि थी उसको बंग देश कहा करते थे। शास्त्रों में भी ये बंग देश शब्द आता है। राजा अकबर के दरबार में एक राजा थे, एक उनके मंत्री थे जिनका नाम था अबुल फजल। उन्होंने एक ग्रंथ लिखी थी, एनी अकबरी, अकबरी या एक अकबर का इतिहास। उसमें उन्होंने बताया है कि बंग देश में जो राजा थे अपने राज में ऐसे बड़े बड़े मिट्टी के बंग बनाते थे जिनको आल कहते थे, तो इससे वो देश का नाम आया बंग आल, बंगाल। तो बंगाल शब्द का वहां से आता है। तो इस तरह से बंग देश और गौड़ देश, निमाई पंडित रहते थे गौड़ देश में, तो भ्रमण के लिए जाना चाहते थे बंग देश में। उनकी बोली इत्यादि बहुत अलग है, तो वहां गए और गौड़ देश को बंग देश को पावन कर दिया। पद्मावती नदी में पहुंचे और वहां स्नान किया, और पद्मावती देवी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। कल हम वर्णन कर रहे थे कि हालांकि गंगा देवी की उपासना ब्रह्मा जी, शिव जी और एक अन्य देव करते हैं, फिर भी गंगा जी के हृदय में एक कामना थी कि जो सौभाग्य यमुना देवी को प्राप्त हुआ वो मुझे भी प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में विराजे तो यमुना जी के जल में बहुत क्रीड़ाएं की उन्होंने, बहुत लीलाएं की। ये अवसर गंगा जी को कभी प्राप्त नहीं हुआ था। तो गंगा जी हमेशा प्रार्थना करती थी कि कब वो दिन आएगा जब प्रभु इसी तरह से मेरे जल में क्रीड़ा करेंगे। निमाय पंडित के रूप में गंगा जी की ये सारी इच्छाएं भगवान ने पूरी कर दी। और पद्मावती देवी ये प्रार्थना करती, मेरे सौभाग्य गंगा जी के समान कब होगा, तो उनकी वांछा पूरी कर दी निमाय पंडित ने, क्योंकि उनके जल में भी स्नान किया अपने भक्तों के संग में और फिर वहाँ पद्मावती के तट पर निवास करे। उस समय बंग देश के सारे ब्राह्मणों को पता चला कि अध्यापक शिरोमणि निमाय पंडित यहाँ आए हैं, तो सब भाग भाग कर अपने अपने गांव से वहाँ आए, क्योंकि निमाय पंडित का यश फैल गया था सब जगह। सभी लोग जानते थे कि निमाय पंडित इतने विद्वान हैं, और सभी आके भेद उपहार इत्यादि लेकर आए निमाय पंडित के पास में और कहने लगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारी भूमि धन्य हो गई कि आपके चरण कमल यहाँ पड़े। और इस तरह से वो निमाय पंडित के गुणगान करने लगे, कहने लगे कि हम तो केवल आपकी टिप्पणी से ही सीख रहे हैं, क्योंकि बंगदेश से नवद्वीप जो गए थे ब्राह्मण वो निमाय पंडित के विद्यार्थी बने थे और निमाय पंडित की टिप्पणी लेकर वापस आए थे और फिर ये टिप्पणी सब जगह उन्होंने बांट दिया। तो बंगदेश के ब्राह्मण भी निमाय पंडित की टिप्पणी पढ़ते थे, उससे सीखते थे, और वो कहने लगे कि आप तो साक्षात बृहस्पति हैं, बृहस्पति अर्थात देवताओं के गुरु। और फिर कहते नहीं नहीं, बृहस्पति की बात दूर है, आप तो साक्षात श्री हरि हैं, क्योंकि इसके बिना ऐसा अद्भुत विद्वत्ता किसी भी व्यक्ति में नहीं हो सकता है, तो कृपा करके यहाँ पर आप रहें और हमें ज्ञान प्रदान करें, हम आपसे सीखना चाहते हैं। तो निमाय पंडित ने कहा ठीक है, तो वहाँ कई दिन तक रहे और हजारों की संख्या में ब्राह्मण उनके पास आए शिष्य के रूप में, और भगवान ने ऐसी कृपा की उनके ऊपर कि 2 महीने में हर एक व्यक्ति को निपुण बनाकर भेज देते थे और कोई न कोई पदवी उनको दे देते थे, एक एक शास्त्र के ऊपर किसी को निपुण बनाकर भेज दिया। तो इस तरह से और भी हजारों की संख्या में लोग आए। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये दृश्य क्या था मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, कितने हजारों हजारों ब्राह्मणों ने निमाय पंडित या भगवान श्री कृष्ण का संग किया उस समय। और वहां पर एक ब्राह्मण थे हंस के समान शुद्ध, जिनका नाम था तपन मिश्र। तपन मिश्र लंबे समय से सोच रहे थे ये भगवान कैसे प्राप्त किया जाए, जीवन का उद्देश्य क्या है, साध्य साधी और साधन के बारे में विचार कर रहे थे। साध्य मतलब जीवन का उद्देश्य और साधन मतलब उस उद्देश्य को प्राप्त करने का मार्ग या तरीका। तो साधन और साध्य के बारे में तपन मिश्र के मन में भ्रांति थी, कंफ्यूजन था। तो एक बार उनके स्वप्न में एक देवता आए और उन्होंने कहा कि हे अत्यंत सुधीर विप्र तपन मिश्र, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी, नवद्वीप के पंडित निमाय पंडित अभी पद्मावती नदी के तट पर निवास कर रहे हैं, जाओ उनको जाके ये प्रश्न करो कि साध्य क्या है और साधन क्या है। ये जो है निमाय पंडित ये साक्षात श्री नारायण है लेकिन नर्क की लीला कर रहे हैं केवल सारे मनुष्य समाज का उद्धार करने के लिए, तो ये बात किसी को मत बताना जो मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम बताओगे तो जीवन भर दुखी रहोगे। तो तपन मिश्र जागे निद्रा से और तुरंत चले गए निमाय पंडित के पास में, दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण कमलों को आलिंगन करके अपने वक्ष स्थल पर रखा और कहने लगे कि मैं तो बहुत दीनहीन नीच जीव हूँ, कृपा करके मेरे ऊपर ज्ञान कृपा करके मुझे इस संसार से मुक्त करा दीजिए, मुझे साधन और साध्य के बारे में मुझे ज्ञान दीजिए। तो निमाय पंडित बड़े प्रसन्न हुए तपन मिश्र के ऊपर और कहने लगे कि तुम बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हो क्योंकि तुम कृष्ण की भक्ति करना चाहते हो। जो व्यक्ति कृष्ण का भक्ति करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। वास्तव में ये तपन मिश्रा कृष्ण के कई मंत्रों का उच्चारण किया करते थे लेकिन फिर भी उनके मन में कोई भक्ति में दृढ़ता जागृत नहीं हो रही थी। तो सोच पड़ते थे मैं इतने मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ लेकिन प्रगति कुछ हो नहीं रही है, क्या कारण हो सकता है। वास्तव में फिर निमाय पंडित ने समझाया। सनातन गोस्वामी नाम के शिष्य थे निमाय पंडित के। आगे चलकर निमाय पंडित ने विस्तार इस बात को सनातन गोस्वामी को समझाया था। उन्होंने बताया था नाम कीर्तन भागवत श्रवण ये दो बहुत महत्वपूर्ण अंग है और जो व्यक्ति इन दो चीजों को करता है बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवन ये पांच अंग जो है भक्ति के बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये किसी भी पांच अंगों में से एक अंग का थोड़ा भी अगर हम कुछ करें तो हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने समझाया ये अति महत्वपूर्ण चीज है। अगर कोई व्यक्ति जितना भी मंत्रों का उच्चारण क्यों न कर रहा हो जितना भी मूर्ति की सेवा क्यों न कर रहा हो जब तक वो नाम संकीर्तन नहीं करता है तब तक वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। निमाय पंडित ने बताया था परमेश्वरा से कि देखो अलग अलग युग में अलग अलग धर्म होते हैं और भगवान अलग अलग युगों में इन युग धर्मों की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं और इस कलयुग में युग धर्म है हरिनाम का संकीर्तन। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। वो कहने लगे कि कृत युग अर्थात सतयुग में युग धर्म था ध्यान का मार्ग। कृते यत ध्यायतो विष्णु विष्णु के ऊपर ध्यान करना, त्रेतायाम यजतो मखई बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करना त्रेता युग में ये युग धर्म था। द्वापरे परिचर्यायाम बड़े धूमधाम से ऐश्वर्यशाली भगवान के मंदिर में उनकी आराधना उपासना करना ये द्वापर युग का युग धर्म था। और इन तीन युगों में ये तीन प्रकार के कार्य संपन्न करने से जो फल मिलता था वो कलयुग में केवल हरिनाम का संकीर्तन करने से मिल जाता है। कलौ तद हरि कीर्तनात् हरि कीर्तन का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है तपन मिश्रा। अब हम ये ध्यान रखना चाहिए कि निमाय पंडित ने ये पहली बार ऐसा उपदेश दिया। आज तक निमाय पंडित केवल एक व्याकरण के अध्यापक के रूप में पेश आ रहे थे सबके सामने और ये जो संवाद हुआ तपन मिश्र और निमाय पंडित के बीच में एक गुप्त संवाद था, कोई और उस समय उपस्थित नहीं था। और चैतन्य महाप्रभु आगे कहने लगे कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरंगे था। इस कलयुग में एक ही मार्ग है एक ही मार्ग है एक ही मार्ग है और वो है हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। जब शास्त्र में किसी वस्तु के ऊपर जोर दिया जाता है कोई बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु होता है तो तीन बार दोहराया जाता है। तो महाप्रभु ने एक बृहद नारदीय पुराण का यह श्लोक बताया प्रमाण के तौर से और कहा कलि संतरण उपनिषद में यह श्लोक है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसको महामंत्र कहते हैं हे तपन मिश्रा। ये साधारण मंत्र नहीं है महामंत्र है। इस महामंत्र का उच्चारण करो और तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। मेरे वचनों में श्रद्धा रखो हे तपन मिश्रा। तो पहली बार ये हरे कृष्ण महामंत्र का बाहरी रूप से उच्चारण दूसरों के सामने निमाय पंडित ने किया लेकिन दूसरों के दृष्टि से अभी तक वो व्याकरण के पंडित थे और तपन मिश्र से कहा कि जाओ तुम वाराणसी जाओ काशी। तपन मिश्र तो उनके संग में नवद्वीप पर रहना चाहते थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम वाराणसी जाओ। क्या उद्देश्य था महाप्रभु का? क्योंकि वाराणसी जो है वो मायावादी लोगों की राजधानी है। मायावादी मतलब कौन है? वो व्यक्ति जो भगवान को निराकार समझते हैं, सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं, अस्तित्व नहीं, आकार नहीं, भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान निराकार है, हम भगवान हैं, आप भगवान हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर माया का जो आवरण है वो हट जाएगा तो हम भी समझ जाएंगे कि हम भगवान हैं और हम भगवान हो जाएंगे। ये मायावादियों की धारणा रहती है। मायावाद जब कहते हैं कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनका शरीर भी माया का बना हुआ है, जैसे हमारा शरीर जड़ पदार्थों का बना हुआ है, इनको मायावादी कहते हैं। तो भगवान के चरण कमलों में ये बड़े अपराधी होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि इन मायावादियों का उद्धार किसी न किसी तरह से किया जाए, तो उन्होंने अपने दूत प्रतिनिधि तपन मिश्र को भेजना चाहा और कहा कि हे तपन मिश्र, तुम वाराणसी में जाकर रहो, सही समय पर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और साधन और साध्य तत्व के बारे में और व्याख्या तुमसे करूंगा, मुझे वाराणसी में बहुत कुछ करना है। और चैतन्य महाप्रभु के मध्य लीला में ये वाराणसी में जो किए हुए सुंदर लीलाओं का वर्णन हम पढ़ सकते हैं। तो तपन मिश्र ने फिर बताया कि हे प्रभु, मेरे कल रात सपने में देवता आए थे और उन्होंने बताया कि आप साक्षात हरि हैं। तो निमाय ने कहा कि हाँ, तुमने जो स्वप्न देखा वो बिल्कुल सही है, लेकिन किसी को भी नहीं बताना, ये बात केवल तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तो तपन मिश्र ने कहा जैसे आपसे आ गया, और तपन मिश्र वहां से निकले और निमाय पंडित फिर वापस अपने गांव नवद्वीप में आए। बहुत दिनों के बाद आए थे और लोगों ने उनको बहुत सारा भेंट दिया था, तो बहुत सारा सोना चांदी वगैरह वगैरह लेकर आए, जो भी ब्राह्मणों अन्य लोगों ने उनको भेंट दिया था लेकर आए। अब जब निमाय पंडित बंग देश में थे, उस समय लक्ष्मी प्रिया देवी जो है नवद्वीप में, विरह का अनुभव इतना हो रहा था उनको, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी देवी हैं, नारायण से दूर नहीं रह सकती हैं, तो विरह का सर्प में उन्होंने काट लिया और उन्होंने प्रकट लीला अपनी समाप्त कर दी और वापस अपने धाम चले गए और एक माया का शरीर पीछे छोड़ गए। तो सखी माता को जब पता चला कि उनकी बहू का देहांत हो गया है तो बड़ी दुखी हो गई और ऐसे फूट फूट के रो रही थी। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि लकड़ी भी है वो भी पिघल गया और सारे जो रिश्तेदार थे वो आए, उनको सांत्वना देने लगे। और जब निमाय पंडित लौट कर आए तो किसी ने उनको तुरंत बताया नहीं। उन्होंने आकर गंगा जी में स्नान किया, आकर फिर विष्णु की पूजा की, तुलसी जी की सेवा की और फिर अपना भोजन लेने बैठे और तब उनके जो रिश्तेदार थे वो भी साथ में आए और निमाय पंडित बंग देश के लोगों की नकल करने लगे, जिस तरह से वो बंगाली बोलते थे। हम देखते हैं कि हर एक प्रांत में एक ही भाषा अलग अलग तरह से बोली जाती है, जैसे यहाँ की कन्नड़ और मैसूर की कन्नड़ में फर्क है, यहाँ के मराठी में और पुणे की मराठी में फर्क है, यहाँ के हिंदी में और उत्तर की हिंदी में बहुत फर्क है। तो ऐसे उसी तरह से बंग देश के और गौड़ देश के बंगाली में बहुत फर्क है। तो निमाय पंडित बंग देश के बंगाली का मजाक उड़ाया करते थे और नकल करते थे और जोर जोर से अट्टहास करते हंसते। तो उस समय वैसे किसी को छोड़ते नहीं महाप्रभु, सबका मजाक उड़ाते थे, ऐसा कोई था नहीं जिनका मजाक निमाय पंडित ने नहीं उड़ाया था नवद्वीप में, केवल वो महिलाओं को छोड़ते थे। महिलाओं कोई स्त्री को देखा तो तुरंत दूर हो जाते थे और उनको पास होने देते थे। महिलाओं को छोड़कर ऊपर से नीचे सभी को निमाय पंडित छेड़ा करते थे, खास करके श्रीहट्ट जो कि बंग देश में है वहां के जो निवासी थे उनका तो बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे और बार बार उनके सामने जाकर उनका नकल करते और भाग जाते और कई बार ऐसे उनको क्रोधित करते कि वो निमाय के पीछे डंडा लेकर भागते थे पीटने के लिए और निमाय तेजी से भाग जाते, पकड़ नहीं पाते थे। कई बार पकड़ लेते थे उसे मुसलमान अधिकारी के पास ले जाते थे, फिर उनके शिष्य आकर उनको छुपा देते थे। अब भगवान ऐसी लीला क्यों करते थे वो तो वही जाने, लेकिन केवल हम सुनेंगे, सुनने मात्र से हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो खैर जब आए निमाय पंडित वापस घर में, इस तरह से बंग देश के लोगों की मजाक उड़ा रहे थे, किसी का साहस नहीं हुआ उनको बताने के लिए कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। आखिर में वो सब चले गए और फिर सखी माता अंदर अपने कमरे में चले गई, बड़ी उदास थी तो जब निमाय अंदर चले गए तो कहने लगे, अरे माता मैं इतने दिनों के बाद मैं आ रहा हूँ घर में वापस, तुम्हें खुश होना चाहिए, दुखी क्यों हो, क्या बात है। सची माता बोल नहीं पाए। उस समय अन्य जो लोग एक तो ब्राह्मण वहां थे, उन्होंने बताया कि हे पंडित तुम्हारे पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। तो निमाय पंडित ने सुना तो थोड़े क्षणों के लिए सर नीचे कर लिया और एक साधारण व्यक्ति की तरह शोक करने लगे, जैसा कि प्रभु रामचंद्र शोक कर रहे थे जब उनको पता चला कि सीता देवी का अपहरण हो गया है। वो तो साक्षात भगवान है, तो प्रभु रामचंद्र जी को शोक करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि एक मनुष्य की लीला कर रहे थे, तो एक साधारण मनुष्य की तरह वो भी व्यवहार कर रहे थे। तो निमाय पंडित ने थोड़ी देर शोक किया और फिर कहने लगे, उपदेश करने लगे अपनी माता को, यहाँ ये संसार के संबंध क्या है, क्षणिक है, ये सब झूठे संबंध है, कौन किसकी माता है, कौन किसके पति है, कौन किसका बेटा है, कौन क्या है ये संसार में, वास्तव में ये सही है। और एक साधु ने भी कहा है, काते कांता कस्ते पुत्र संसार यम अतीव विचित्र कत्यत्व कह कुत आया अस्तत्व चिंतया तभी भ्रात। वे कहते हैं कि हे भाई, साधु दूसरों से कहते हैं कि कौन तुम्हारा प्रेमी है, काते कांता कस्ते पुत्र किसके पुत्र हो तुम, संसार यम अतीव विचित्र, ये संसार के संबंध और बंधन जो है अति विचित्र है, कस्य तुम कहां से आए हो, कह तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है, ये सब इन चीजों के बारे में थोड़ा चिंतन करो मेरे भाई। ऐसे साधु ने अच्छे श्लोक को बताया है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उपदेश कर रहे थे कि संसार में जो भी संबंध है ये सब मिथ्या के संबंध है, हमारा सही संबंध केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ में है। तो ऐसे उपदेश देने के बाद में सारे ब्राह्मणों का शोक और सखी माता का शोक कम हो गया और फिर से निमाय पंडित के संग में उनको थोड़ी बहुत आनंद की अनुभूति हुई। इस प्रकार से निमाय पंडित ने अपने दैनिक कार्य फिर से आरम्भ किए। वैसे तो भगवान की लीलाएं अनंत हैं और बहुत सारी लीलाएं हैं, हो सके तो रविवार के दिन दोपहर को हम और बहुत सुंदर लीला का वर्णन करेंगे, जब निमाय पंडित ने अपने अद्भुत विद्वत्ता का प्रदर्शन किया। और वो लीला है जब निमाय पंडित ने दिग्विजयी केशव कश्मीरी को वाद विवाद में हरा दिया। ये लीला हम रविवार को सुनेंगे और अगर एक दो दिन और में कोई लीला सुनेंगे ठीक है, नहीं तो अगले साल फिर से गौर पूर्णिमा के समय जहाँ से इस बार समाप्त किया वहाँ आगे और बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने इतनी शांति से इतना लंबा प्रवचन सुना, यहाँ सहन किया आप कह सकते हैं, और आपके अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं या कोई टिप्पणी इत्यादि।
जब आपने बताया कि अद्वैत आचार्य को जब चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, इनके योग में ऐसे वो प्रभावित हो गए थे, इसी कारण उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने जन्म लिया। लेकिन जो अद्वैत आचार्य है तो महाविष्णु है, ये योग माया से कैसे उनके ऊपर प्रभाव हो जाता है।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने योग माया के प्रभाव में अपने आप चले जाते हैं, तो अद्वैत आचार्य क्यों नहीं जा सकते। जब भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा की छवि को देखकर भयभीत होकर भाग रहे थे, क्या वो झूठा भय था या सच्चा भय था, क्या लगता है आपको बताइए जी। नहीं, इसमें कोई अचिंत भेदाभेद नहीं है, वास्तव में घबरा गए थे भगवान, ऐसे नहीं कि भयभीत होने की नकल कर रहे थे, सचमुच घबरा गए। अभी हम कह सकते हैं कि जिनके बहुओं को देखकर देवी देवता घबराते हैं, कांपते हैं, तो उनके भय से पवन चलता है, भीषास्मार माता है पवते भीषो देती सूर्य भीषो देती चंद्र अग्निश्च, चंद्रमा अपने प्रकाश देती है उनके डर से, आग अपना उजाला देती है, अपना उष्णता देती है उनके डर से, सब कुछ हो रहा है उनके डर से, मृत्यु सबका पीछा कर रही है उनके डर से, मृत्यु धावती पंचमह। और वो व्यक्ति आज एक गांव के महिला की छवि से घबरा रहे हैं, ये है भगवान की लीला। तो भगवान अपने लीला शक्ति के प्रभाव में खुद आ जाते हैं अपनी स्वेच्छा से, उस लीला के रस का आस्वादन करने के लिए। तो इसी तरह से भगवान की लीला को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए भगवान की लीला शक्ति और योग माया शक्ति काम करती है। इसलिए अगर अद्वैत आचार्य को पता होता कि निमाय पंडित भगवान श्री कृष्ण है तो फिर कुछ सस्पेंस नहीं होता ना, आनंद नहीं आता कुछ, उसमें रस नहीं आता। इसलिए निमाय पंडित ने इस बात को बाद में ही प्रकट किया। ठीक है, हरे कृष्ण।
प्रभु जी आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्रा को सबसे पहले ये बताया कि वो स्वयं कृष्ण है, इसका कोई विशेष कारण था?
वो सब वैसे देखा जाए तो पहली बार नहीं, बाल लीला में उन्होंने ब्राह्मण के ऊपर बड़ी कृपा की थी, वो ब्राह्मण को उन्होंने बताया था और ये उनसे कसम वचन ली थी कि आप भी किसी को बताएंगे नहीं कि मैं वशिष्ठ कृष्ण हूँ। तो निमाय पंडित ने सोचा कि अब तक मेरा समय नहीं आया मेरा असली आंदोलन शुरू करने का, मेरा यहाँ प्रकट होने का जो असली उद्देश्य है उसको सबके सामने रखना उसके लिए सही समय नहीं आया है, उसके लिए अभी थोड़ा समय है। इसलिए उन्होंने तपन मिश्रा से गुप्त ही गुप्त रूप में उनको ज्ञान दिया और वाराणसी भेज दिया।
तपन मिश्रा को ही क्यों दिया, उनका कुछ विशेष कारण है? तपन मिश्रा के क्वालिफिकेशन
वृंदावन दास ठाकुर यही बात बताते हैं क्यों तपन मिश्रा को वाराणसी मायावादियों के अड्डे में भेज दिया, ये भगवान क्यों कैसे कार लीला करते हैं वो भगवान ही जाने। लेकिन बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो वो मायावादियों के का उद्धार करना चाहते थे, तो तैयारी के लिए पहले की तैयारी के लिए तपन मिश्रा को भेजा, किसी को तो भेजना था, तपन मिश्रा को चुन लिया उन्होंने क्योंकि वो उनके नित्य पार्षद थे, उनके भक्त थे, तो उनको चुनकर उनको भेजा। क्योंकि ये अवतार जो चैतन्य महाप्रभु का है, भागवत में बताया गया ये छन्न अवतार है अर्थात गुप्त अवतार, सभी को बताना नहीं है। जब महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया उस समय भी सभी को नहीं बताया कि वो भगवान है। जब उनके भक्त उनकी आराधना करते और उनको विष्णु कह के संबोधित करते तो अपने कान बंद कर देते, विष्णु 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 ऐसे अपराध मत करो। तो इस तरह से जन साधारण में कभी ये बात फैलाई नहीं उन्होंने कि मैं भगवान, केवल उनके विशेष भक्तों को ये ज्ञान था कि ये साक्षात भगवान है। उनका काम था एक भक्त के रूप में आकर भक्ति कैसे करना है वो सबको सिखाना। इसलिए अपने लीला के अनुसार वो अलग अलग रसों का आस्वादन करना चाहते थे। इसमें इस समय वो एक विद्वान पंडित होने का, सबसे बड़ा विद्वान होने का जो आनंद है वो लूटना चाहते थे, तो ये लीला उन्होंने की। और बाद में जाके उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे भगवान इच्छा रखते रस का आस्वादन करने के लिए उस हिसाब से वो वैसे वैसे लीला प्रकट करते हैं अपने भक्तों के संग में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं यहाँ से सर्वेशु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति परस्तस्मात् भावो व्यक्तो व्यक्तार्थनात्न, कि जो ये जगत है नश्वर है लेकिन इस जगत के परे और एक जगत है हे अर्जुन जो जिसका नाश कभी नहीं होता है, तद धाम परम मम और वो धाम मेरा धाम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, और जब कोई व्यक्ति उस धाम को प्राप्त होता है तो लौट कर संसार में नहीं आता है। दूसरे शब्दों में भगवान का धाम शाश्वत है, नित्य है, वहाँ पे किसी भी चीज का नाश नहीं होता है, और वही भगवान के धाम का एक अंश यहाँ इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर प्रकट होता है। भगवान अपने अचिंत्य शक्ति से उस धाम को इस नश्वर क्षणिक भौतिक जगत के भीतर प्रकट करते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु जिनके पास सारे देवी देवता जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, पुरुष सुक्त प्रार्थना करते हैं, वो श्वेत द्वीप भी एक वैकुंठ लोक है इस भौतिक जगत के भीतर। और जब भगवान प्रकट होते हैं अपने धाम को साथ में लेकर आते हैं, तो जब श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए वृंदावन में तो केवल खुद नहीं आए, केवल अपने पार्षदों को ही नहीं लेकर आए, अपने धाम का धाम लेकर आए। तो जो वृंदावन है वो हम इन आंखों को नहीं देख, इन आंखों से नहीं देख सकते। हम वृंदावन जाएंगे तो क्या देखते हैं, रिक्शा है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, बंदर हैं, कुत्ते हैं, लोग घूम रहे हैं, ये वृंदावन नहीं है। सही वृंदावन देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए, तब हम देख पाएंगे। तो अचिंत्य शक्ति से भगवान अपने धाम को ही, जो कि नश्वर नहीं है, शाश्वत है, उसे इस नश्वर जगत में प्रकट करते हैं। ठीक उसी तरह से ध्रुव लोक को भी भगवान ने अपने अचिंत्य शक्ति से प्रकट कराया।
वृंदावन धाम वास करते हैं और वहाँ साधारण जीवन जीते हैं सामान्य, तो क्या वो सचमुच मरने के बाद गोलोक धाम जाते हैं?
ऐसा समझाया जाता है शास्त्रों में कि जो भगवान के धाम में निवास करते हैं, खास करके वृंदावन जैसे धाम में, अगर वो सही ढंग से भगवान की भक्ति करते हो तो निश्चित रूप से गोलोक वृंदावन में लौट कर चले जाएंगे। लेकिन अगर वृंदावन धाम में रहते हुए वो पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, दुराचारी बन जाते हैं, तो सीधे भगवान के धाम में नहीं जा सकते, तो उनको और एक जन्म वृंदावन में लेना पड़ता है। लेकिन किस योनि में, चाहे वो बंदर बनते हैं या सुअर बनते हैं या कुत्ता बनते हैं, इसलिए वृंदावन में जाएंगे। तीन योनियां आप देखेंगे, बहुत सारे पशु इन तीन योनि के हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये पूर्व किसी जन्म में भिलवासी थे, कोई पाप किया, इस जन्म में ऐसे शरीर प्राप्त करके उनको सारे जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, और फिर जब अपराध शून्य हो जाते हैं तो फिर शुद्ध अवस्था में वापस लौटते जाते हैं। ठीक है।